अभिमन्यु इशिका को पार्टी में ले जाने के लिए ऊपर कमरे में आया था। इस दौरान उन दोनों के बीच एक मोमेंट क्रिएट हुआ। अभिमन्यु और इशिका एक दूसरे को काफी पेशेंटली किस कर रहे थे, तभी दरवाजे पर अंजलि ने दस्तक दी। अंजलि भी काफी प्रेशराइज्ड हो गई थी, क्योंकि बार बार अर्पित और आदित्य उसे अभिमन्यु से बात करने को कह रहे थे। दरवाज़ा खुलने की आहट के साथ ही इशिका और अभिमन्यु एक दूसरे से जल्दी से अलग हो गए, लेकिन फिर भी अंजलि ने उन्हें साथ में देख लिया था। अभिमन्यु को देखकर न जाने क्यों अंजलि की पलकें भीगने लगी थी। उसने हमेशा यही सुना था कि अभिमन्यु के फेशियल फीचर्स काफ़ी हद तक उससे मिलते हैं। अंजलि और अभिमन्यु की आंखें बिल्कुल एक जैसी थीं। उसके चेहरे पर वही कॉन्फिडेंस था जो अंजलि के चेहरे पर था। वो मुझे तुमसे बात करनी है, अंजलि लड़खड़ाते शब्दों में बोल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अभिमन्यु को अपना इंट्रोडक्शन कैसे दे। वहीं अपने सामने अंजलि को देखकर अभिमन्यु के चेहरे के भाव सर्द होने लगे। भले ही दोनों माँ बेटे आज पहली बार एक दूसरे के सामने आए हों, लेकिन अभिमन्यु ने उसे देखते ही पहचान लिया था। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है मिस चौहान, अभिमन्यु ने सर्द आवाज में कहा। जिस लहजे में अभिमन्यु बात कर रहा था उससे अंजलि समझ गई थी कि अभिमन्यु उसे पहचान गया है, या हो सकता है वो उसे पहले से जानता हो। अंजलि के चेहरे पर हल्के हैरानी के भाव थे। उसने धीरे से पूछा, तो तुम जानते हो मैं कौन हूँ? नहीं, मैं नहीं जानता आप कौन हैं, और ना ही मैं जानने में इंटरेस्टेड हूँ, अभिमन्यु ने गुस्से में जवाब दिया। वहीं अभिमन्यु के पास खड़ी इशिका ने कुछ हद तक अंदाज़ा लगा लिया था। उसने अभिमन्यु का हाथ पकड़ा। इशिका के हाथ पकड़ने पर अभिमन्यु ने उसकी तरफ देखा तो उसने अभिमन्यु को आंखों ही आंखों में शांत रहने को कहा। अंजलि ने गहरी सांस ली। वो कुछ कहती उससे पहले उसकी नज़र अभिमन्यु और इशिका के हाथों की तरफ गई। दोनों के बीच काफ़ी अंडरस्टैंडिंग लग रही थी। अचानक अंजलि के चेहरे के भाव सख्त होने लगे। भले ही अभिमन्यु को देखकर वो कुछ पल के लिए इमोशनल हो गई थी, पर अब उसने जो देखा था उसे देखकर उसके सॉफ्ट इमोशंस गुस्से में बदल गए थे। तुम भी बिल्कुल अपने बाप की तरह निकले, अंजलि ने दांत पीसते हुए कहा। लगता है राजवंश फैमिली का अच्छा खासा रंग चढ़ गया है तुम्हारे ऊपर, जो अपने बाप और सौतेले भाई की तरह रिश्ते में धोखेबाजियां करने की आदत है। मैंने सुना तुम्हारी पत्नी मर गई है, उसे मरे हुए एक महीना भी नहीं बीता है, और तुम यहाँ होटल रूम में किसी और लड़की के साथ। अंजलि बोलते हुए रुक गई। वो कुछ पल रुक कर गुस्से में बोली, मुझे तो कहते हुए भी शर्मा रही है। गेट आउट, अभिमन्यु ने काफ़ी बेरुखी से तेज़ आवाज़ में कहा, जिसे सुनकर अंजलि मानो अपनी जगह पर जमसी गई थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अभिमन्यु के सामने आने पर वो उससे इस तरह बदतमीजी से बात करेगा। अभिमन्यु का ऑरा सर्द होने लगा। वो तेज़ आवाज़ में बोला, मुझे किसी को एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किसके साथ कब क्या कर रहा हूँ। रिश्ते में वफादारी की बातें तो आप मत ही कीजिए मिस चौहान। जो औरत अपने पेट में पल रहे बच्चे के लिए वफादार नहीं हो पाई, वो दूसरों को लॉयल्टी का ज्ञान देते हुए अच्छी नहीं लग रही। इससे पहले कि अभिमन्यु का गुस्सा बेकाबू होता और वो अंजलि के साथ और बुरा बर्ताव करता, इशिका ने अंजलि से कहा, प्लीज़ यहाँ से चली जाइए, आपका हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, तो मैं भी यहाँ रिश्ता निभाने के लिए नहीं आई हूँ, कोई ज़रूरी बात थी तभी आई हूँ। मुझे इससे अकेले में बात करनी है, तो बाहर निकलो यहाँ से। वैसे भी तुम्हारी कोई औकात नहीं है जो हम दोनों के बीच में बोलो। तुम जैसी लड़कियाँ पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर सकती हैं, अंजलि गुस्से में इशिका को भला बुरा सुनाने लगी। एक पल के लिए अभिमन्यु अंजलि की बातों को झेल सकता था, पर जिस तरह से वो इशिका की इंसल्ट कर रही थी, ये अभिमन्यु की बर्दाश्त के बाहर था। इशिका वहां से जाने को हुई, तभी अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़ लिया और अंजलि की आंखों में आंखें डालकर मजबूती से कहा, अगर कोई इस कमरे से बाहर जाएगा तो वो आप हैं। वन मोर थिंग, मैं किसी के जैसा नहीं हूँ। अब तक खुद की किस्मत पर गुस्सा आता था कि ना तो माँ का प्यार मिला है और ना ही बाप का, लेकिन आज लग रहा है कि मैं लकी हूँ जो मुझे मेरी दादी की परवरिश मिली। आप और प्रशांत राजवंश दोनों ही मुझे डिजर्व नहीं करते हैं। अंजलि की नज़रें झुक गई थीं। वो अभिमन्यु से कितनी भी नफरत क्यों ना करे, लेकिन गलती उसी की थी। अभी तक तो उसने अभिमन्यु को सच्चाई बताई भी नहीं थी, तब ये हाल था। तो पूरी सच्चाई जानने के बाद तो अभिमन्यु की नफरत कई गुना बढ़ने वाली थी। अंजलि की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसे आदित्य के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताए। अभिमन्यु ने अंजलि को इग्नोर किया और फिर इशिका की तरफ देखकर प्यार से कहा, नीचे प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलते हैं, अब वक्त आ गया है ये बताने का कि मेरी मिसेज राजवंश बिल्कुल सही सलामत है, अभिमन्यु ने जानबूझकर तेज आवाज में कहा, ताकि अंजलि को समझ आ सके कि वो किसी और लड़की के साथ नहीं बल्कि अपनी पत्नी के साथ कमरे में था। अंजलि ने उसकी बात को सुना तो वो भी समझ गई थी, पर उसने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया। अभिमन्यु ने अंजलि को साइड किया और इशिका का हाथ पकड़कर बाहर जाने लगा। तभी अंजलि ने उसका हाथ पकड़ लिया था। अंजलि के हाथ पकड़ने पर अभिमन्यु ने उसे बुरी तरह झटक दिया, मानो किसी घटिया चीज को छू दिया हो। अंजलि ने प्लीडिंग वॉइस में कहा, ठीक है, मैं नहीं जानती थी कि ये लड़की तुम्हारी पत्नी है, मैंने जो भी कहा उसके लिए आई एम सॉरी, पर मेरा तुमसे बात करना बहुत ज़रूरी है। आपके पास 5 मिनट का टाइम है, जो भी कहना है जल्दी कहिए, अभिमन्यु ने घड़ी की तरफ इशारा करके कहा। मुझे अकेले में बात करनी है, अंजलि ने इशिका की तरफ देखते हुए कहा। वो नहीं चाहती थी कि उनकी बातचीत के दौरान इशिका वहां पर रहे, लेकिन मेरी वाइफ कहीं नहीं जाएगी, अभिमन्यु बेपरवाही से बोला। इशिका नहीं चाहती थी उनके बीच में बहस हो, उसने धीरे से अभिमन्यु का हाथ खुद से अलग करके कहा, मुझे रेस्टरूम जाना है, तुम बात कर सकते हो। इशिका ने आंखों ही आंखों में अभिमन्यु को शांत रहने को कहा और फिर रूम के बाथरूम की तरफ चली गई। इशिका के वहां से हटते ही अंजलि अभिमन्यु के पास आई और बोली, देखो अगर तुम्हें ये लग रहा है कि अचानक मैं तुम्हारी जिंदगी में आकर उसे डिस्टर्ब करना चाहती हूँ तो ऐसा मत समझना। मैं कुछ नहीं समझूंगा मिस चौहान, क्योंकि मेरे दिल में आपको लेकर कोई फीलिंग नहीं है। आप मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। सो अपनी फीलिंग्स और अंदाजों को साइड में रखकर जो कहना है जल्दी कहिए, मेरे पास फ्री टाइम नहीं है, अभिमन्यु ने बेरुखी से कहा। उसके बात करने का रवैया साफ बता रहा था कि वो अंजलि से किस हद तक नफरत करता है। अंजलि ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ जानती हूँ तुम मुझसे नफरत करते हो। चलो तुम्हें एक वजह दे देती हूँ खुद से नफरत करने की। नहीं मिस चौहान, एक वजह काफी है, अभिमन्यु ने जवाब दिया। उसने गहरी सांस ली और फिर कहा, आपका टाइम खत्म हो गया है मिस चौहान। वैसे भी आज का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं उसे किसी ऐसे शख्स के साथ जाया नहीं करना चाहता जिसकी मेरी लाइफ में कोई अहमियत नहीं। इतना कहकर अभिमन्यु वहां से बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। तभी अंजलि ने पीछे से जल्दी से कहा, तुम्हारी जान को खतरा है, वो भी मेरी वजह से। अभिमन्यु उसकी तरफ पलटा और कड़वाहट से मुस्कुरा कर कहा, कौन सा पहली बार है। अभिमन्यु बार बार अंजलि को शर्मिंदा फील करवा रहा था। अंजलि चुप हो गई थी तो अभिमन्यु ने भौहें उठाकर कहा, पिछली बार बच्चा था तब भी हैंडल कर लिया था, तो अब तो बड़ा हो गया हूँ। डोंट वरी, आपके क्रिएट किए गए सारे खतरों को मैं देख लूंगा और प्लीज आगे से मेरे सामने मत आइएगा, चाहे फिर बात मेरी जान की ही क्यों ना हो। आपको कब से मेरी जान की फिक्र होने लग गई।
मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, तुम्हें मेरी बात सुन लेनी चाहिए, अंजलि ने सख्ती से कहा। वो कुछ पल रुक कर बोली, जब तुम पैदा होने वाले थे तब। बोलते हुए अंजलि एक पल के लिए ठिठकी। उसको ये कहते हुए शर्म आ रही थी कि उसने अभिमन्यु के पैदा होने से पहले मारने की कोशिश भी की थी। उसने खुद को मजबूत करके एक सांस में सब कुछ बताने का निश्चय किया। मैं प्रशांत राजवंश के साथ शादी से खुश नहीं थी, मेरे भी कुछ सपने और एम्बिशंस थे। मैं बहुत छोटी थी उस वक्त, शादी हुई सो हुई, फिर अचानक से प्रेगनेंसी भी सिर पर आ गई। मुझे कुछ पता नहीं था, मुझे कुछ भी करके उस शादी और बच्चे से पीछा छुड़ाना था, तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट के लिए हाँ कह दी थी। दिल्ली में उस वक्त एक बहुत ही फेमस फैमिली हुआ करती थी, वो साइंस एक्सपेरिमेंट और मेडिकल में अपने कंट्रीब्यूशन के लिए बहुत फेमस थी। तुमने नाम नहीं सुना होगा, मैं मर्चेंट फैमिली की बात कर रही हूँ। उसी ने तुम्हारे ऊपर वो एक्सपेरिमेंट किया था जिसकी वजह से शायद तुम इतने इंटेलिजेंट हो, या तुम्हारे अंदर कोई और भी क्वालिटीज़ होंगी, तुम चीज़ों को जल्दी सीख जाते होंगे। अंजलि सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी। अभिमन्यु ने अंजलि के मुंह से मर्चेंट फैमिली का नाम सुना तो वो हैरान रह गया। वहीं इशिका भी उस वक्त बाहर आ रही थी, उसने भी अंजलि की आखिरी कुछ बातें सुन ली थी। जिस मर्चेंट फैमिली के बारे में वो लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, अचानक उसके राज एक झटके में उनके सामने खुल गए थे। अंजलि को अब अपने किए पर पछतावा हो रहा था। उसने अभिमन्यु से कहा, मैं जानती हूँ मैंने गलती की थी, पर मैं उस वक्त इतनी समझदार नहीं थी। वो लोग वापस आ गए हैं और तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं क्योंकि तुम उनका सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हो। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम खुद को उनसे कैसे बचाते हो। मैं यही कहूंगी कि इस पार्टी से अपनी पत्नी को लेकर जितना जल्दी हो सके यहाँ से दूर चले जाओ। हो गया आपका, अभिमन्यु ने भौहें उठाकर कहा। वो गुस्से में बोला, जरूर ये सब बताने के लिए भी उन्होंने आपको भेजा होगा मिस चौहान। आपका काम हो गया है तो अब यहाँ से आप जा सकती हैं, बाकी किससे कैसे निपटना है वो मैं देख लूंगा। लेकिन मैं नहीं चाहती तुम्हें कुछ हो, अंजलि ने इमोशनल होकर कहा। अब ये झूठे इमोशंस दिखाकर कोई फायदा नहीं है। अगर आप नहीं चाहती थी मुझे कुछ हो तो 28 साल पहले आपको कुछ डिसीजंस सोच समझ कर लेने चाहिए थे, अभिमन्यु ने जवाब दिया और अंजलि को बाहर जाने का इशारा किया। अंजलि को लगा था सच जानने के बाद अभिमन्यु उस पर न जाने कितना गुस्सा करेगा, लेकिन उसने उससे कोई शिकायत नहीं थी। वो बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट कर रहा था और ये बात अंजलि को और भी बुरी लग रही थी। न जाने क्यों अंजलि का मन कर रहा था कि वो अभिमन्यु के पास रुके, उससे बात करे, पर अभिमन्यु की बेरुखी साफ बता रही थी कि उससे बात करना तो दूर, वो उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। कुछ पल अभिमन्यु को देखने के बाद अंजलि वहां से बाहर चली गई। अंजलि के जाते ही इशिका जल्दी से बाहर आई और उसने अभिमन्यु से कहा, अगर इन्होंने जो भी कहा वो सच है तो ये बहुत बड़ी बात है, तुम्हें यहाँ से चलना चाहिए, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। अभिमन्यु, खतरा तो तुम्हारी जान को भी है, याद है ना अर्पित मर्चेंट तुम्हें ढूंढ रहा था। अब समझ आ रहा है ईशानी इनसे बचने की कोशिश क्यों करती थी। इशिका, वो लोग पार्टी में आए हुए हैं तो हमें उन्हें कैसे भी करके पकड़ना चाहिए, अभिमन्यु ने काफी सोच समझ कर जवाब दिया। उसका कहना भी सही था, ये एक अच्छा मौका था जब वो मर्चेंट फैमिली को ट्रैप कर सकते थे। इशिका ने कुछ पल सोचा और फिर उसकी बात पर हामी भर दी थी। उसे भी राधिका तक पहुंचना था और मर्चेंट फैमिली ही इकलौता रास्ता था जो उसे राधिका तक पहुंचा सकती थी। ठीक है, फिर हमें इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। इस बार शिकारी खुद शिकार बनेगा, इशिका ने हल्का मुस्कुराकर कहा। उसके दिमाग में भी काफी कुछ चल रहा था। अभिमन्यु ने उसकी बात पर हामी भरी और तुरंत पृथ्वी को कॉल करके कहा, पार्टी हॉल की सिक्योरिटी टाइट कर दो पृथ्वी, कोई भी इंसान बाहर नहीं जाना चाहिए। मर्चेंट फैमिली का एक शख्स यहाँ पर मौजूद है, हमें बस किसी भी हाल में उसे ट्रैप करना है। ठीक है, मुझे बस 5 मिनट दीजिए, मीडिया अंदर आ रही है, उनके आने के बाद मैं डोर क्लोज करवा दूंगा, पृथ्वी ने जवाब दिया और फिर कॉल कट कर दिया था। हालांकि इस मौके पर अभिमन्यु का इशिका को सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाना खतरे से खाली नहीं था, फिर भी अर्पित मर्चेंट को ट्रैप करने के लिए इशिका और अभिमन्यु ये रिस्क लेने जा रहे थे। अभिमन्यु ने इशिका का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए बाहर जाने लगा। फिलहाल के लिए इतना ही, पढ़कर रेटिंग और कॉमेंट किया करो।